राजस्थान के अपने नेटिव प्लेस के एक रेस्टोरेंट में बैठा 18 साल का एक छात्र भारत की सांप्रदायिक स्थिति पर एक तीखी चर्चा सुन रहा है। मुसलमानों की स्थिति के बारे में जानकर उसका आक्रोश और बढ़ने लगता है। वह अपने समुदाय के लिए कुछ करने के लिए व्यग्र हो उठता है। उसने जो कुछ सुना उसी ने उसे एक ऐसे संगठन का वॉलंटियर बनने को प्रेरित कर दिया जिसके बारे में तब तक वह कुछ नहीं जानता था, और वो संगठन था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो इन दिनों PFI के नाम से काफी चर्चा में है। केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह इसी संगठन को कथित जिहादी संगठन से लिंक होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं पूजा मेहरोत्रा। आप सभी का द प्रिंट पॉड के संक में स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूं हमारी संवाददाता बिस्मी तस्कीन की रिपोर्ट, कभी कॉलेज का छात्र अब एक सफल वकील, कैसे आक्रोश ने इस मुस्लिम युवक को बनाया PFI का सदस्य। 7 साल बीत चुके हैं। राजस्थान का वह छात्र नई दिल्ली में एक सफल वकील बन चुका है, लेकिन PFI से आज भी जुड़ा हुआ है। उसने चाय की चुस्कियां लेते हुए कहा, हमें पता था कि यह दिन आएगा। मैं तो यही सोच रहा हूं कि उन्होंने अभी तक मुझे क्यों नहीं उठाया। जितने लोगों को मैं जानता हूं उसमें से कोई नहीं बचा है। PFI में शामिल होने की शर्तें ऐसी नहीं थीं जो किसी सामान्य किशोर को आकर्षित कर सकें। उस समय यानी 2015 में PFI के जिला अध्यक्ष ने अब वकील बन चुके इस छात्र को बताया था कि सदस्यों को शराब, तंबाकू उत्पादों के सेवन, विवाह पूर्व यौन संबंध आदि की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सदस्यों को पाक साफ 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होना चाहिए, और उनके लिए दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों से दूरी बनाना भी जरूरी होगा। वकील ने बताया, मैं पहले से ही एक अच्छा मुसलमान था, इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत शामिल कर लिया, और अब 7 साल हो चुके हैं। कोई सदस्यता कार्ड नहीं दिया गया था, केवल संगठन के नियम कायदों से जुड़ी एक बुकलेट दी जाती है। वकील ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग जगहों, संगठनों और सभाओं की मुस्लिम परंपरा के मद्देनजर PFI में केवल पुरुष सदस्य ही हैं। हालांकि इसकी एक महिला विंग है जिसे राष्ट्रीय महिला मोर्चा कहा जाता है। साथ ही कई अन्य संबद्ध संगठन जैसे रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर फ्रंट ऑफ एम्पावर इंडिया फाउंडेशन आदि भी हैं। इन सभी को अगले 5 वर्षों के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि PFI ने पिछले कुछ वर्षों में अपना आधार तेजी से बढ़ाया है। वकील इस बात से सहमत हैं, लेकिन कहते हैं कि RSS विरोधी और हिंदुत्व विरोधी रुख के कारण लोग संगठन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, हम एकजुट करने वाली ताकत हैं। कोई भी PFI के दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता। धर्म कोई मायने नहीं रखता। वकील के मुताबिक PFI किसी औपचारिक भर्ती अभियान के जरिए कैडर भर्ती नहीं करता है। इसके बजाय अड्डा या परिचर्चा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां संगठन के कामकाज आदि पर चर्चा होती है, और बताया जाता है कि भारत में मुसलमानों की आवाज को एकजुट होकर मजबूत करने की कितनी जरूरत है। उन्होंने बताया, जब कोई PFI के बारे में सुनता है तो वे सदस्यों, समर्थकों और वॉलंटियर से संपर्क साधते हैं, जो उन्हें वरिष्ठ पदाधिकारियों के पास ले जाते हैं। वकील ने बताया कि नए सदस्यों का पहला काम समर्थन जुटाना होता है। PFI के विचारों के बारे में बताना, अल्लाह का संदेश फैलाना और दूसरों को सरकार की कथित मुस्लिम विरोधी नीतियों पर चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना, यह शुरू में पोस्टर लगाने और चैट ग्रुप पर मैसेज फॉरवर्ड करने के जरिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि PFI मुख्यतः 4 मोर्चे पर ज्यादा काम करता है, शिक्षा, आर्थिक राहत, कानूनी सहायता और मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध जताना। हर महीने एजेंडा तैयार होता है और अभियान की रूपरेखा तय की जाती है। PFI सदस्यों के लिए महीने में कम से कम एक बार पार्टी कार्यालय में मिलने का नियम है। संगठन का दावा है कि उसने असम और बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किया है, और कोविड के दौरान PPE किट और ऑक्सीजन सिलेंडर भी वितरित किए हैं। वकील ने यह भी दावा किया कि लाखों भारतीय इस संगठन का हिस्सा हैं, जिनमें से अधिकांश दक्षिण भारत से हैं, लेकिन कई अन्य लोग भी हैं जो संगठन के साथ सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने कहा कि पीएफआई फंडिंग के लिए मुख्यतः चंदे पर निर्भर है। साथ ही जोड़ा कि इसका एक बड़ा हिस्सा रमजान के महीने में मिलने वाली जकात के माध्यम से आता है। जकात यानी धार्मिक चंदा। पीएफआई को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंधित करने संबंधी अपनी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा है कि संगठन आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में शामिल रहा है और इसने देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। पीएफआई पर प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की ही एक शाखा होने का भी आरोप है। इसके खिलाफ प्रमुख आरोपों में 2020 के दिल्ली दंगों के लिए फंडिंग करना, 2020 हाथरस बलात्कार और हत्या मामले के मद्देनजर हिंसा भड़काना और नागरिकता संशोधन के विरोध के लिए वित्तीय और साजो सामान के स्तर पर सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने यह आरोप भी लगाया है कि इसने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फंडिंग, भर्ती और ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया। हालांकि वकील ने ऐसे सभी आरोपों से इनकार किया है। पीएफआई के कुछ सह संस्थापक सिमी से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि यह उसी संगठन की शाखा है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की नींव बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होने के 2 साल के बाद पड़ी। सिमी को 2001 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। हमारे संगठन में राजनीतिक दलों के पूर्व सदस्य भी हैं, लेकिन केवल सिमी की बात करना और कुछ नहीं बल्कि पीएफआई को एक कुख्यात संगठन के तौर पर चित्रित करने की कोशिश भर है। पीएफआई का आधिकारिक तौर पर यही कहना है कि यह संगठन 2006 में दक्षिण भारत के 3 संगठनों के विलय के साथ अस्तित्व में आया था। केरल का नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का संगठन मनीथा नीति परसाई। सशस्त्र प्रशिक्षण और आतंकी फंडिंग पर वकील कहते हैं, सुरक्षा एजेंसियों से हमें फोटो और वीडियो दिखाने के लिए कहिए। यह सब सोची समझी चाल है। पहले उन्होंने पीएफआई को बदनाम किया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया और अब जनभावना अपने साथ करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और अगला कदम प्रतिबंध लगाना ही है। उनके मुताबिक पीएफआई को बदनाम करने के हर संभव प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें किसी को निशाना बनाना होता तो उसका नाम पीएफआई के साथ जोड़ देते हैं। सिद्दीकी कप्पन को देखो, उमर खालिद को देखो, शाहीन बाग के आंदोलन से पीएफआई का कोई लेना देना नहीं था। यह सब प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए किया गया। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को अक्टूबर 2020 में हाथरस जाते समय रास्ते से गिरफ्तार किया गया था, जहां एक दलित युवती बलात्कार की शिकार बनी थी। कप्पन पर आरोप लगाया गया कि वह शांति भंग करना चाहते थे और उनके पीएफआई के साथ गहरे रिश्ते हैं। वहीं उमर खालिद फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे के मामले में आरोपियों में से एक हैं, जिसका पुलिस ने पीएफआई से लिंक बताया है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस की कार्रवाई के बाद, जिसमें 106 लोग गिरफ्तार किए गए और 250 को हिरासत में लिया गया, अब पीएफआई की आधिकारिक वेबसाइट को हटा दिया गया है और शाहीन बाग में इसका कार्यालय सील हो गया है। पीएफआई सदस्यों के परिजनों और परिचित भी परेशान हैं। द प्रिंट ने जब कुछ गिरफ्तार सदस्यों के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पीएफआई से जुड़े किसी भी व्यक्ति के फोन नंबर हटा दिए हैं। वकील ने बताया, जब भी स्थानीय पुलिस को पता चलता है कि किसी छात्र को पीएफआई सदस्यों से बात करते देखा गया है तो उन्होंने चेतावनी दी जाती है कि क्रांति करोगे तो जेल जाओगे। बहरहाल उन्होंने जैसे ही चाय खत्म की और अपनी स्कूटी उठाकर चलने लगे। सीआरपीएफ के कुछ जवान शाहीन बाग की गलियों से गुजरते नजर आए। अभी के लिए बस इतना ही। दिप्रिंट पॉड का यह अंक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए दिप्रिंट हिंदी से। नमस्कार।